एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
हाँ,
तो आज हम सब मिलकर एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं आज हम?
अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में, और इस सफर में हमारे गाइड हैं एक बहुत बड़े विद्वान, सर जॉनथन बेट। आज हम उनकी नजरों से देखेंगे कि ये अंग्रेजी साहित्य आखिर है क्या चीज।
बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम अंग्रेजी साहित्य सुनकर शायद सिर्फ इंग्लैंड की कुछ पुरानी किताबों के बारे में सोचते हैं ना?
हाँ, वही शेक्सपियर, डिकेंस।
पर सर जॉनथन बेट हमें दिखाते हैं कि ये तस्वीर कितनी, मतलब कितनी अधूरी है। ये तो एक बहुत बड़ी दुनिया भर में फैली हुई बातचीत है, एक तरह का ग्लोबल डायलॉग।
हाँ, और यही बात इसे आज के जमाने में समझना और भी जरूरी बना देती है कि नहीं? क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये भाषा, हमारी पहचान, कहानियों की ताकत और साहित्य समाज में क्या भूमिका निभाता है, उसका लक्ष्य क्या है, इन सब गहरे सवालों से जुड़ा है।
सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल।
तो सबसे पहले जरा सर जॉनथन बेट के बारे में जान लें, ये कौन है?
हाँ बिल्कुल, देखिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े एक बहुत ही जाने माने साहित्य के विद्वान और आलोचक हैं। शेक्सपियर और रोमांटिक कवियों पर तो इनका काम मतलब कमाल का है ही, साथ ही ये इको क्रिटिसिज्म यानी साहित्य और पर्यावरण के रिश्ते को समझने में भी माहिर हैं।
ओछा, इको क्रिटिसिज्म, ये तो काफी नया और दिलचस्प फील लगता है।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि इतनी गहरी जानकारी होने के बावजूद इनकी लिखने और समझाने की शैली बहुत बहुत ही सरल और आकर्षक है।
हाँ, मैंने भी सुना है, ये सिर्फ विद्वान नहीं बल्कि एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं, तभी तो इन्हें साहित्य और शिक्षा जगत में इनके योगदान के लिए सर की उपाधि नाइटहुड से भी नवाजा गया है।
सही बात है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि ये साहित्य को सिर्फ क्लासरूम की चीज नहीं मानते। ये उसे हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और यहां तक के हमारे आसपास के पर्यावरण से जोड़कर देखते हैं।
मतलब साहित्य का एक बड़ा रोल, एक बड़ा लक्ष्य देखते हैं वो।
बिल्कुल, ये नजरिया उनके विश्लेषण को बहुत खास और जरूरी बनाता है। ये साहित्य के रोल और उसके लक्ष्य को बहुत व्यापक दायरे में देखते हैं।
तो बेट का मुख्य तर्क क्या है? उनकी किताबों का सार हमें क्या बताता है?
देखिए, उनकी मूल बात यह है कि अंग्रेजी साहित्य का मतलब सिर्फ वो साहित्य नहीं जो इंग्लैंड में लिखा गया, बल्कि वो साला साहित्य है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है।
अच्छा, भाषा, जगह नहीं।
हाँ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये एक लगातार बहती हुई बदलती हुई वैश्विक बातचीत है, एक नदी की तरह जो अपने सोर्स से बहुत दूर तक बहती है।
और वो इस बनी बनाई धारणा को भी तोड़ते हैं कि अंग्रेजी साहित्य की कोई एक तयशुदा पत्थर की लकीर जैसी लिस्ट है जिसे कैनन कहते हैं।
क्यों? हाँ, वो कहते हैं ये कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, इसके बजाय वो इसे एक सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह देखते हैं, मतलब एक जीवित सिस्टम जो हमारे समाज, राजनीति और निजी अनुभवों से लगातार बनता बिगड़ता रहता है और उन्हें प्रभावित भी करता है।
वाह, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। यानी साहित्य सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि एक्टिवली समाज को बनाता भी है।
एग्जैक्टली, ये साहित्य को एक सक्रिय शक्ति के रूप में पेश करता है।
बिल्कुल, यानी बेट हमें सिर्फ मशहूर किताबों की लिस्ट नहीं देते बल्कि वो बुनियादी सवाल पूछते हैं। ये अंग्रेजी साहित्य चीज क्या है? ये बना कैसे? इसका महत्व क्या है? ये समाज के लिए क्या करता है? क्या लक्ष्य साधता है?
हाँ, वो हमें इतिहास की यात्रा पर तो ले जाते हैं, पर साथ ही भाषा बनाम जगह, साहित्य और राष्ट्रीय पहचान, ये कैनन कैसे बनता है और साहित्यिक मूल्य क्या हैं, जैसे विचारों की गहराई में भी उतारते हैं।
तो उनका मकसद क्या है ये सब करके?
उनका मकसद साफ है, छात्रों से लेकर हम जैसे आम जिज्ञासु पाठकों तक सबको साहित्य को समझने के कुछ जरूरी औजार देना, ताकि हम इसे सिर्फ स्कूल के सिलेबस की तरह न देखें, बल्कि विचारों की एक जिंदा प्रणाली समझें, जिसका हमारी जिंदगी और समाज में एक अहम रोल है, एक निश्चित लक्ष्य है।
तो इस गहरे समंदर में गोता कहां से लगाया जाए? शुरुआत कहां से होती है इसकी?
देखिए, बेट पारंपरिक शुरुआत पर ही सवाल उठा देते हैं, जैसे क्या बियोवुल्फ को अंग्रेजी साहित्य की एकदम शुद्ध शुरुआत माना जा सकता है?
आमतौर पर तो वहीं से शुरू करते हैं लोग।
हाँ, पर बीट कहते हैं शायद, नहीं, इसकी जड़ें तो जर्मेनिक और स्कैंडिनेवियाई कहानियों में है, और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत ही वो कई भाषाओं के मेल से हुई थी। लैटिन, फ्रेंच का गहरा असर था।
अच्छा, तो शुरुआत ही मिक्स्ड थी।
बिल्कुल, वे कैडमन्स हिम का उदाहरण देते हैं कि कैसे मूँह ज़बानी चली आ रही कहानी लिखित ईसाई रूप में ढल गई, और यहीं से बीट एंग्लो सैक्सन साहित्य के कुछ गहरे भावों जैसे उदासी, किस्मत का लिखा, जीवन की क्षणभंगुरता की बात करते हैं।
जो बाद के साहित्य में भी देखते हैं।
हाँ, जो बाद के साहित्य में भी बार बार उभरते रहे। कितना दिलचस्प है ये सोचना।
और फिर वो बुनियादी सवाल, अंग्रेजी का मतलब क्या?
हाँ, बीट इसी पर जोर देते हैं कि ये पहचान भूगोल से नहीं, भाषा से जुड़ी है। वो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के लेखकों का उदाहरण देते हैं। जोनाथन स्विफ्ट आयरिश, रॉबर्ट बर्न स्कॉटिश, डैलन थॉमस वेल्श।
ये सब तो कैनन में बहुत अहम है।
बिल्कुल, ये सब अंग्रेजी साहित्य के मुख्य धारा में गिने जाते हैं, पर ये इंग्लैंड के नहीं थे। ये दिखाता है कि अंग्रेजी साहित्य की पहचान जमीन से ज्यादा जुबान में है ना?
हाँ, सही कहा। और फिर यही अंग्रेजी भाषा, ये तो पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका, भारत, अफ्रीका, कैरेबियन द्वीप।
सलमान रुश्दी या चिनुआ अचेबे जैसे लेखक अंग्रेजी को अपने बिल्कुल अलग, अनूठे अनुभव बताने और उपनिवेशवाद के दौर पर सोचने लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो अंग्रेजी साहित्य अब किसी एक केंद्र का मोहताज नहीं रहा, ये एक वैश्विक परंपरा बन गया है।
बिल्कुल, यहाँ बेथ चौसर का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स में समाज के हर तबके, अमीर गरीब, पादरी व्यापारी, सबको जगह देकर मानव साहित्य का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया, साहित्य को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया।
लेकिन इस इतने बड़े बिखरे हुए मंच के केंद्र में कौन है? कोई एक नाम तो होगा।
बेट के अनुसार विलियम शेक्सपियर, बेट उन्हें सिर्फ एक महान नाटककार नहीं मानते, बल्कि पूरी परंपरा का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं।
गुरुत्वाकर्षण केंद्र, वाह, क्यों, ऐसा क्यों?
क्योंकि उनके नाटकों और कविताओं का दायरा बहुत बड़ा है, भाषा में जादू है, इंसानी जज्बातों की गहरी समझ है, और सबसे बड़ी बात, हर जमाना उनकी रचनाओं को अपने तरीके से समझता और अपनाता रहा है।
हाँ, ये तो है। आज भी उनके नाटक खेले जाते हैं, पढ़े जाते हैं।
और वो उस पुनर्जागरण, रेनेसांस काल के प्रतीक हैं, जिसने यूरोप के पुराने ज्ञान और आम लोगों की भाषा को मिलाकर कुछ नया रचा।
और शेक्सपियर ने अलग अलग साहित्यिक रूपों, फॉर्म्स और विधाओं, जॉनर्स में कमाल दिखाया। बेट हमें साहित्य की इन बनावटों के बारे में भी सोचने को कहते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे कविता, भाषा का सबसे सधा हुआ लयबद्ध रूप। इसमें मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट जैसे महाकाव्य भी हैं, और वर्ड्सवर्थ या कीट्स की छोटी, दिल को छूने वाली कविताएं भी।
नाटक जो मंच पर खेले जाने के लिए लिखा जाए, जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी।
उपन्यास, गद्य में लंबी कहानी कहने का तरीका जो 18वीं सदी में उभरा, डेफो, रिचर्डसन से लेकर जेन ऑस्टिन तक।
यहाँ बेट का अहम तर्क ये है कि ये रूप या विधा सिर्फ सजावट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहानी के मतलब को, उसके असर को, उसके लक्ष्य को तय करते हैं। कोई बात कैसे कही जा रही है, ये बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल, और ये रूप सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, जैसा आपने कहा।
नहीं, बेट दिखाते हैं कि कैसे साहित्य, खासकर शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक जैसे रिचर्ड द्वितीय, हेनरी फाइव या किसी देश के महाकाव्य, हमारी राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक यादें गढ़ते हैं।
यानी साहित्य सिर्फ इतिहास बताता नहीं, बल्कि इतिहास बनाता भी है।
हाँ, ये साहित्य की नैतिक और राजनैतिक ताकत भी दिखाता है। कैसे वो सत्ता पर सवाल उठा सकता है, कैसे वो हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की आवाज बन सकता है, ये साहित्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका है, उसका एक लक्ष्य है।
लेकिन ये तय कौन करता है कि कौन सी किताब महान है, किसे पढ़ना जरूरी है? ये जो कैनन वाली बात थी।
हाँ, ये बड़ा सवाल है। बेट इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। ये कोई आसमान से उतरी लिस्ट नहीं है, बल्कि सदियों से विद्वानों, आलोचकों, प्रकाशकों, यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों द्वारा किए गए चयनों का नतीजा है।
तो मतलब ये बदलता रहता है।
बिल्कुल, बेट इसकी तुलना एक ऐसी संसद से करते हैं जहां हमेशा बहस चलती रहती है, एक शोरगुल वाली सतत संसदीय बहस। नए सदस्य चुनाव लड़ते हैं, पुराने वालों पर अविश्वास प्रस्ताव आता रहता है। क्या बढ़िया उपमा है।
हाँ, ये तो मजेदार है।
और इस कैनन पर सवाल भी उठे हैं, उसे चुनौती भी मिली है। जैसे नारीवादी आलोचकों ने पूछा कि इसमें महिला लेखिकाएं इतनी कम क्यों हैं?
हाँ, ये तो जरूरी सवाल है।
फिर पोस्ट कॉलोनियल यानी उत्तर औपनिवेशिक नजरिए से सोचने वालों ने कहा कि इसमें सिर्फ गोरे अंग्रेज पुरुष लेखकों पर ही ज्यादा ध्यान क्यों दिया गया, उन आवाजों का क्या जो गुलामी के दौर से निकली हैं।
इन सवालों से कुछ बदला भी है?
हाँ, इन सवालों ने कैनन को ज्यादा खुला और समावेशी बनाने में मदद की है। और यहीं बैठ ये भी पूछते हैं कि साहित्यिक मूल्य, लिटरेरी वैल्यू क्या चीज है? क्या ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात है या इसका कोई फॉर्मूला है?
तो क्या है इसका जवाब?
बेट कहते हैं दोनों ही नहीं। ये एक पेचीदा फैसला है जो मौलिकता, जीवन की सच्चाई, नैतिक गहराई, ऐतिहासिक असर जैसे कई पैमानों पर टिका होता है। यहाँ आलोचक की भूमिका मतलब क्रिटिक का रोल अहम हो जाता है।
और भविष्य कैसा दिखता है अंग्रेजी साहित्य का, बेट क्या सोचते हैं?
बेट यहाँ काफी उम्मीद जगाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इसे और रंग बिरंगा बना रहा है। डिजिटल दुनिया, ई बुक्स, ऑनलाइन लिटरेचर स्टडीज नए रास्ते भी खोल रही है और नई चुनौतियां भी ला रही है।
और वो इको क्रिटिसिज्म वाली बात?
हाँ, इको क्रिटिसिज्म जैसे नए नजरिए पुरानी किताबों से नए सवाल पूछ रहे हैं। जैसे क्या शेक्सपियर के नाटक किंग लियर में तूफान सिर्फ मौसम है या प्रकृति का अपना कोई रोल है कहानी में, प्रकृति की अपनी कोई भूमिका है?
इंटरेस्टिंग।
बेट्स आज के लेखकों सलमान रुश्दी, जेडी स्मिथ, काजुओ इशिगुरो का भी जिक्र करते हैं जो इस लंबी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। साहित्य का अध्ययन और उसकी भूमिका, उसका लक्ष्य लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है।
तो अगर हम बेट के इन सारे विचारों का निचोड़ निकालें तो कुछ मुख्य बातें क्या उभरती हैं? पहली बात क्या होगी?
सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, अंग्रेजी साहित्य का अंग्रेजीपन इंग्लैंड देश में नहीं, अंग्रेजी भाषा में है। ये एक वैश्विक नदी है जिसमें दुनिया भर की धाराएं आकर मिलती हैं।
और ये वैश्विक धारा भारत में भी उतनी ही सशक्त है?
बिल्कुल, जहां अंग्रेजी में लिखने की एक अपनी लंबी और महत्वपूर्ण परंपरा विकसित हुई है।
दूसरी बड़ी बात क्या है?
दूसरी बात, साहित्य सिर्फ बीते हुए कल का आईना नहीं दिखाता, बल्कि वो हमारी राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक यादों को गढ़ने वाली एक, आप कह सकती हैं, भट्टी की तरह है।
हाँ, बेट के शब्दों में कहें तो ये उन प्रमुख भट्टियों में से एक हैं जिसमें किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक चेतना और सामूहिक स्मृति को गढ़ा जाता है।
बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई की कहानियाँ या लोक कथाएँ हमें जोड़ती हैं और हमारी पहचान बनाती हैं। साहित्य का ये एक सक्रिय रचनात्मक रोल है, एक लक्ष्य है।
तीसरी बात, शेक्सपियर, वो तो है ही।
हाँ, शेक्सपियर इस पूरी परंपरा के केंद्र में है। बेट उन्हें गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं, जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। उन्हें समझकर हम पूरी प्रणाली को बेहतर समझ सकते हैं।
और उनका असर सिर्फ इंग्लैंड या पश्चिम तक सीमित नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में ही देखिए, उनके नाटकों पर कितनी फिल्में बनी हैं, कितने नाटक खेले गए हैं।
और चौथी बात, वो कैनन वाली।
हाँ, कि जिसे कैनन या महान साहित्य की सूची कहते हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये एक लगातार चलने वाली बहस है जिसमें समय के साथ बदलाव आते हैं, नई आवाजें शामिल होती हैं।
ये हमें स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले साहित्य पर सोचने और सवाल करने की ताकत देता है।
और इसी से जुड़ी पांचवी बात ये है कि साहित्य एक लोकतांत्रिक कला हो सकती है।
मतलब
जो समाज के हर तबके को आवाज दे सकती है, खासकर उन्हें जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। साहित्य का ये भी एक जरूरी रोल या लक्ष्य है।
ये सारे विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम साहित्य को कैसे देखते हैं। बेट का नजरिया हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ चीजें सिखा सकता है, क्यों?
हाँ, बिल्कुल। जैसे पहली बात है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग।
वो कैसे?
जैसे बेट अंग्रेजी साहित्य की आसान सी परिभाषा पर सवाल उठाते हैं, हम भी अपने आसपास की चीज़ों, खबरों, विज्ञापनों, यहाँ तक कि नेताओं के दावों पर सवाल उठा सकते हैं। चीज़ों को ऊपरी तौर पर लेने के बजाय उनकी तह तक जाने की कोशिश कर सकते हैं।
हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी स्किल है आज के ज़माने में। दूसरी चीज़ क्या है?
दूसरी चीज़ है कहानी या नैरेटिव की ताकत को समझना। बेट दिखाते हैं कि कहानियाँ कैसे पहचान बनाती हैं, कैसे इतिहास गढ़ती हैं।
इसका रोज़मर्रा में क्या फ़ायदा?
ये समझ हमें राजनीति में, मीडिया में या रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होने वाली कहानियों के असर को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करती है। हम सोच सकते हैं कि कोई कहानी क्यों सुनाई जा रही है, उसका असली मकसद क्या है।
अच्छा, और तीसरा?
तीसरा, ये हमारे आपसी संवाद को बेहतर बना सकता है। साहित्य के अलग अलग रूप, कविता, कहानी, नाटक हमें सिखाते हैं कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने पर उसका असर कैसे बदल जाता है।
हाँ, सही बात है। ये समझ हमें अपनी बात ज्यादा प्रभावी ढंग से कहने में मदद कर सकती है, चाहे ईमेल लिखना हो या दोस्तों से बात करनी हो।
चौथा, आज के जमाने में जहां चारों तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है,
हाँ, बहुत ज्यादा।
ये हमें चुनाव करने का एक तरीका सिखा सकता है। जैसे साहित्य में हम मौलिकता, गहराई, प्रासंगिकता जैसे गुणों को महत्व देते हैं, वैसे ही हम अपने लिए खबरें, लेख या सोशल मीडिया कंटेंट चुनते समय भी सोच सकते हैं कि क्या वाकई में हमारे समय और ध्यान के लायक हैं।
एक तरह का फिल्टर लगाना।
बिल्कुल। और पांचवी बात, ये हमें दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है।
वो कैसे?
ये समझना कि एक ही भाषा, अंग्रेजी, में कितने अलग अलग तरह के अनुभव, नाइजीरिया के गांव की कहानी से लेकर लंदन के आप्रवासी के संघर्ष तक बयान किए जा सकते हैं, हमें दुनिया की विविधता का एहसास कराता है।
ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समझना हमें एक दूसरे के नज़रिए को बेहतर समझने में मदद करता है।
एग्जैक्टली।
आज की इस बातचीत से मेरे लिए तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सीख यही रही कि अंग्रेज़ी साहित्य कोई म्यूज़ियम में रखी चीज़ नहीं, बल्कि एक जीती जागती दुनिया भर में फैली हुई बातचीत है। और अंग्रेज़ी का मतलब सिर्फ इंग्लैंड नहीं, ये जानकर तो पूरा नज़रिया ही पलट गया।
हाँ, मेरे लिए भी। और मुझे बेट का दिया हुआ वो सोचने का फ्रेमवर्क बहुत काम का लगा। सिर्फ ये नहीं कि कौन सी किताब अच्छी है, बल्कि ये सोचना कि हम साहित्य को पढ़ते और समझते कैसे हैं, साहित्य का मकसद क्या है।
हाँ, वो रोल और गोल वाली बात।
बिल्कुल। ये विचार कि साहित्य एक लोकतांत्रिक ताकत हो सकता है, हाशिए की आवाज़ों को मंच दे सकता है और उसका हमारे पर्यावरण से भी रिश्ता है, ये सब बातें साहित्य को देखने का एक नया, ज़्यादा गहरा नज़रिया देती है। ये साहित्य के रोल और उसके लक्ष्य को फिर से परिभाषित करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए सराहता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।